आज बात करते हैं सत्संग की, मतलब अच्छी संगति में रहने का रास्ता क्या है और इसके असली फायदे क्या हैं। ये विचार आध्यात्मिक गुरु पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के हैं, जिन्हें लोग प्यार से पूज गुरुदेव कहते हैं। उनका मानना था कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बस वही हमारे जीवन की दिशा तय कर देता है, और इसी से हम खुद को, अपने परिवार को और समाज को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इसके तीन मुख्य टेकअवेज देखते हैं। पहला टेकअवे, और ये आपको शायद थोड़ा हैरान करे, कि ध्यान, जप या योग, ये सारी साधनाएं भी तब तक अधूरी हैं जब तक कि अच्छी संगत न हो। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि सत्संग ही है जो इन सब चीजों में आपकी रुचि जगाता है। अरे, यहां तक कि पुराने ग्रंथ जैसे योग वाशिष्ठ, उसमें भी यही कहा गया है कि संतों की संगति में रहना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। अब आते हैं दूसरे टेकअवे पर। एक सवाल है, क्या सिर्फ महंगी पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ होती है? देखिए, अच्छी संगत के बिना तो ऊंची डिग्री वाले लोग भी रास्ते से भटक सकते हैं। इसीलिए बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके चरित्र पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है। और हाँ, अगर अच्छी संगत न मिले तो महान विचारों वाली पुस्तकें ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। और आखिर में तीसरा टेकअवे, ये सत्संग हमारे मन पर आखिर करता क्या है? ये हमारे अंदर विवेक जगाता है, मतलब सही और गलत के बीच फर्क करने की गहरी समझ, और यही समझ हमें सुख हो या दुख हर हाल में शांत रखती है। आप सोचकर देखिए, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी, वो भी सत्संग के असर से ही इतने महान बन पाए थे। तो कुल मिलाके बात बस इतनी सी है, एक बेहतर जिंदगी की तरफ पहला और सबसे मजबूत कदम सही और गूढ़ी लोगों का साथ चुनना ही है।
हम सब बेहतर बनना चाहते हैं, पर अक्सर हमारी आदतें, हमारा माहौल हमें कहीं ना कहीं पीछे खींच लेता है। आज हम पूज्य गुरुदेव के विचारों से यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सही लोगों को अपनी जिंदगी में लाना ही एक तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा हैक है।
बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये।
आज हम उनके लेख सत्संग का मार्ग और उसके लाभ की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि अच्छी संगति का मतलब सिर्फ अच्छे दोस्त बनाना नहीं, बल्कि शायद एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है।
और ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जप, तप, योग, दान, ये सब रास्ते अपनी जगह हैं।
हाँ,
लेकिन इन सब की शुरुआत होती है सत्संग से। मतलब अगर माहौल ही सही नहीं है तो इन चीजों में रुचि ही पैदा नहीं होगी। सत्संग को वो पहली सीढ़ी मानते हैं।
बिल्कुल, योगा वशिष्ठ का एक श्लोक भी तो यही कहता है।
हाँ, और कमाल की बात यह है कि योगा वशिष्ठ ज्ञान का ग्रंथ है, भक्ति का नहीं, फिर भी वो संगति को सबसे ऊपर रख रहा है।
अच्छा,
ये दिखाता है कि सही माहौल के बिना ज्ञान भी अधूरा है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि किसी को दुनिया की सबसे अच्छी कार दे दी जाए पर सड़कें ही ना हो, तो ज्ञान वो कार है और सत्संग वो सड़क।
तो ये सड़क बनाने की जिम्मेदारी किसकी है?
पूज्य गुरुदेव वो माता पिता पे बहुत जोर देते हैं। उनका कहना है कि बच्चों को सिर्फ किताबी शिक्षा देना काफी नहीं है।
सही बात है।
और इसका एक डरावना पहलू भी है जो वो बताते हैं। हैरानी की बात है कि आज के समय में अच्छी से अच्छी डिग्रियों वाले लोग भी वो चोरी, किडनैपिंग जैसे बड़े बड़े क्राइम में शामिल हो रहे हैं।
ये तो सुनने में आता है।
ये सत्संग की कमी का ही नतीजा है। उन्हें अकेडमिक ज्ञान तो मिल गया पर ये कभी नहीं सिखाया गया कि उस ज्ञान का इस्तेमाल सही दिशा में कैसे करना है।
मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल उठता है, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही गलत रास्ते पर है तो वो सत्संग को चुनेगा ही क्यों? उसकी दिलचस्पी तो गलत संगति में ही होगी ना?
बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर बचपन में डाले गए संस्कार काम आते हैं। लेकिन अगर वो मौका चूक गया तो भी उम्मीद है।
कैसे?
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, लगातार अपनी संगति को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो वो आपको खींच लेंगे, बुरे हैं तो डुबा देंगे।
ठीक है, पर ये अच्छे लोग या महात्मा आज की दुनिया में मिलेंगे कहाँ? क्या इसके लिए मतलब पहाड़ों में जाना पड़ेगा? ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर आज की दुनिया में जहाँ सब इतने बिजी हैं, किसी सच्चरित्र विद्वान को ढूंढकर उनके पास बैठना प्रैक्टिकल लगता है क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही पूज्य गुरुदेव के विचारों की सबसे बड़ी खूबी है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि अपने ही शहर के किसी अच्छे इंसान या किसी संस्था से जुड़ना भी सत्संग है।
अच्छा,
और यहाँ पर उनका सबसे क्रांतिकारी विचार आता है। वो कहते हैं, अगर कोई भी ना मिले तो आत्मनिर्माण करने वाली अच्छी पुस्तकें आपका सबसे बड़ा सत्संग है।
मतलब आपकी बुक शेल्फ?
आपकी बुक शेल्फ आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है।
ये दिलचस्प है। मतलब पुस्तकें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो एक तरह से मेंटर का काम करती हैं। लेकिन पुस्तकें भी तो किसी भी तरह की हो सकती हैं। क्या पूज्य गुरुदेव कोई फिल्टर बताते हैं कि अच्छी पुस्तकें चुने कैसे? क्या किसी की बायोग्राफी पढ़ना भी सत्संग हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। कोई भी पुस्तक जो आपके मन को ऊंचा उठाए, आपको अच्छे विचारों से भर दे, वो सत्संग है। इससे मन बुरे ख्यालों से बचा रहता है। और ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है। मैंने हाल ही में एक स्टार्टअप फाउंडर से बात की थी। उसने बताया कि उसकी तरक्की का सबसे बड़ा कारण उसका वो दोस्तों का ग्रुप था जो हर हफ्ते मिलते थे और एक दूसरे के बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे।
अच्छा, तो ये आज के जमाने का सत्संग ही हुआ एक तरह से।
बिल्कुल है ना।
ठीक है, तो सत्संग के लिए पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, पुस्तकें और अच्छे दोस्त भी काफी हैं।
हाँ,
ये सुनने में आसान लगता है, पर कोई इतनी मेहनत करेगा क्यों? आखिर में इससे हासिल क्या होता है?
इससे जो सबसे कीमती चीज हासिल होती है वो है विवेक।
विवेक
यानी सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ। लेकिन ये सिर्फ एक नैतिक फैसला नहीं है, इसे आज की भाषा में इमोशनल रेगुलेशन कह सकते हैं।
अच्छा, इमोशनल रेगुलेशन।
हाँ, सत्संग आपको इमोशनल ट्रिगर्स से डील करने की क्षमता देता है, ताकि आप हालात के गुलाम ना बने बल्कि उन्हें चलाना सीखें। आप सुख में बहकते नहीं और दुख में टूटते नहीं।
वाह, मतलब वाल्मीकि जो डाकू थे वो सिर्फ सही गाइडेंस मिलने से महाकवि बन गए। ये तो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दिखाता है कि संगति में कितनी ज्यादा ताकत है।
और सिर्फ वाल्मीकि ही नहीं, नारद जी, वशिष्ठ जी, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो सार ये है कि आज की इस दुनिया में जहां हर कोई अपने मतलब की सोचता है, सत्संग और स्वाध्याय ही हमारे सबसे बड़े गार्ड हैं। अच्छे लोग या अच्छी पुस्तकें आपको सही रास्ता दिखाएंगे और गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे।
तो कुल मिलाकर बात सिर्फ धार्मिक सभाओं की नहीं है, बात उस माहौल की है जो हम अपने चारों ओर बनाते हैं, अपने दोस्तों से, अपनी पुस्तकों से, अपनी बातचीत से।
बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं, अगर सही संगति के असर से एक डाकू महाकवि बन सकता है, तो सोचिए आज हम अपनी दोस्ती में या अपनी रीडिंग हैबिट्स में सिर्फ एक छोटा सा सोच समझकर किया गया बदलाव लाकर अपनी जिंदगी में कितना बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमें कई रास्ते भी बताए जाते हैं, जप, तप, योग, दान। लेकिन क्या हो अगर हम इन सब में सबसे जरूरी जो पहला कदम है उसे ही नजरअंदाज कर रहे हों? आज हम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक स्वाध्याय और सत्संग के एक बहुत ही दिलचस्प विचार की गहराई में उतरेंगे कि आप क्या करते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव का ये दावा, मतलब ये बहुत बड़ा और एक तरह से क्रांतिकारी है। वो कहते हैं कि सत्संग यानी अच्छी संगति वो नींव है जिसके बिना आत्म सुधार की कोई भी इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। ये वो पहली चिंगारी है जो बाकी सभी अच्छे कामों के लिए इंसान के अंदर कह सकते हैं कि एक आग लगाती है।
चलिए इसी बड़े दावे को आज परखते हैं। ये कहना कि सत्संग का महत्व जप, तप, तीर्थ और दान से भी पहले आता है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर आपकी संगति अच्छी है तो फिर बाकी सब करने की जरूरत ही नहीं?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इसे समझने के लिए योग वाशिष्ठ का एक श्लोक है जिसे पूज्य गुरुदेव अक्सर दोहराते थे। श्लोक है, यह स्नात शीत शितिया साधु संगति गंगया, किं तस्य दानेई कि तपोभिय किमध्वरै। योगवा,
इसका मतलब तो समझाइए क्योंकि ये थोड़ा गहरा लग रहा है।
इसका सीधा सा अनुवाद है कि जो व्यक्ति साधुओं की संगति रूपी शीतल और निर्मल गंगा में स्नान कर लेता है, उसे फिर किसी तीर्थ, तप, दान या यज्ञ की क्या जरूरत रह जाती है। लेकिन यहाँ असली बात इस मेटाफर को, इस रूपक को समझने में है।
गंगा में डुबकी लगाने का मतलब सिर्फ नहाना नहीं होता।
हाँ, बल्कि पापों का धुल जाना एक तरह का शुद्धिकरण माना जाता है।
अच्छा, तो ये श्लोक कह रहा है कि अच्छी संगति में रहना सिर्फ अच्छी सलाह लेना नहीं है, बल्कि ये एक तरह का आध्यात्मिक स्नान है जो आपके पिछले बुरे संस्कारों को भी धो देता है।
बिल्कुल, यही इसका असली मतलब है। सत्संग सिर्फ आपको सही रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि ये आपके सोचने का तरीका, आपकी इच्छाओं को ही बदल देता है।
और जब आपकी इच्छाएं ही अच्छी हो जाएंगी तो अच्छे काम जैसे दान, तप, सेवा,
वो सब तो अपने आप होने लगेंगे।
हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसे पहली सीढ़ी कहा गया है। ये आपको बदलने की एक प्रक्रिया है, सिर्फ कुछ काम करने का निर्देश नहीं।
ये बात अब ज्यादा समझ में आ रही है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स खड़ा हो जाता है, खासकर आज के जमाने में। हम देखते हैं कि बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़े लिखे बेहद बुद्धिमान और सफल लोग वो बड़े बड़े घोटालों और गलत कामों में शामिल होते हैं। अगर विद्या है, बुद्धि है, तो वो गलत रास्ते पर क्यों जाते हैं?
पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये सत्संग के अभाव का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। आज की शिक्षा आपको काबिलियत तो देती है पर चरित्र नहीं देती। वो आपको सिखाती है कि एक रॉकेट कैसी बनाया जाए, लेकिन ये नहीं सिखाती कि उस रॉकेट का मुंह किस तरफ करना है।
सही बात है, सत्संग वही नैतिक दिशा, वही मॉरल कंपस है, और जब वो नहीं होता तो इंसान अपनी सारी बुद्धि और शक्ति का इस्तेमाल विनाशकारी कामों में करने लगता है।
इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसे सफलता मान रहे हैं वो असल में अधूरी है, और ये बात ये तो माता पिता के लिए भी एक चेतावनी की तरह है।
बहुत बड़ी चेतावनी। आजकल ज्यादातर माता पिता का पूरा ध्यान बच्चों के मार्क्स, उनकी डिग्री, उनके पैकेज पर होता है। वो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि उनका बच्चा जिस स्कूल या कॉलेज में जा रहा है वहाँ का माहौल कैसा है, उसकी दोस्त कैसे हैं,
शिक्षकों का चरित्र कैसा है, ये सब बातें पीछे रह जाती।
जी, पूज्य गुरुदेव इस मामले में बहुत साफ साफ कहते हैं कि बच्चों को शुरुआती सालों में ऐसी जगह पढ़ाना चाहिए जहाँ उन्हें अच्छे संस्कार और प्रेरणा मिले, भले ही उनकी किताबी पढ़ाई में थोड़ी देर क्यों ना हो जाए, क्योंकि चरित्र के बिना वो पढ़ाई आगे चलकर समाज के लिए खतरा भी बन सकती है।
ये तो माता पिता के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला है, खासकर आज के कम्पिटिटिव दौर में, लेकिन ये बात सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, ये तो हुई बच्चों की बात, पर हम जैसे लोगों का क्या, जो अब वयस्क हैं, अपने अपने काम और सोशल सर्कल्स में बंधे हुए हैं, क्या हमारे लिए बहुत देर हो चुकी है? एक वयस्क अपनी संगति को कैसे सुधारे?
नहीं, देर कभी नहीं होती, लेकिन हाँ, वयस्कों के लिए रास्ता थोड़ा अलग और ज्यादा सचेत प्रयासों वाला है। पूज्य गुरुदेव इसके लिए तीन व्यवहारिक कदम बताते हैं।
अच्छा,
पहला, अपने आसपास के माहौल पर लगातार नजर रखें, इस बात को लेकर सतर्क रहें कि आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं उनका चरित्र कैसा है। ये कोई जजमेंट नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक सुरक्षा के लिए एक जरूरत है।
ठीक है, यानी अवेयरनेस पहला कदम है, और दूसरा?
दूसरा कदम है चुनाव करना। अपने दोस्त और करीबी साथी बहुत सोच समझ कर चुने। ऐसे लोगों को चुने जिनका चरित्र श्रेष्ठ हो, जिनकी सोच सकारात्मक हो। ये सुनने में शायद थोड़ा स्वार्थी लगे,
पर ये वैसा ही है जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन चुनते हैं।
बिल्कुल,
मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी संगति चुनना जरूरी है।
और तीसरा कदम क्या है?
तीसरा कदम है अपने रोजमर्रा के दोस्तों के अलावा समय समय पर किसी ज्ञानी, महात्मा या अपने ही शहर के किसी विद्वान और सच्चरित्र व्यक्ति के संपर्क में आना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें जंगलों में साधुओं को खोजना है, वो कोई लेखक हो सकता है, कोई शिक्षक, कोई सामाजिक कार्यकर्ता। ऐसे लोगों के पास कुछ देर बैठना भी विचारों में एक ताजगी ले आता है।
लेकिन मान लीजिए किसी के पास ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई संस्था उपलब्ध ही ना हो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये मुमकिन है, तो क्या उसके लिए कोई रास्ता नहीं है?
है, उसके लिए भी एक बहुत सुंदर और शायद सबसे शक्तिशाली उपाय बताया गया है, स्वाध्याय,
सेल्फ स्टडी। जी, जब कोई अच्छा व्यक्ति ना मिले तो अच्छी पुस्तकें ही आपका सत्संग बन जाती हैं। महापुरुषों के विचार, प्रेरणा देने वाली जीवनियां, आत्मनिर्माण की पुस्तकें पढ़ना भी मतलब सत्संग का ही एक रूप है। ये आपके मन को अकेले में बुरे विचारों से बचाता है और अच्छी भावनाओं को सींचता रहता है।
ये तो कमाल का कनेक्शन है, मतलब ये वापस उसी शिक्षा वाली बात से जुड़ जाता है। अगर हमारी फॉर्मल एजुकेशन हमें नैतिक दिशा देने में नाकाम रही है, तो स्वाध्याय उस कमी को पूरा करने का जिंदगी भर का पाठ्यक्रम बन सकता है।
हाँ, अच्छी पुस्तकें हमारे वो दोस्त बन सकती हैं जो हमें कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगी।
आपने बिल्कुल सही जोड़ा, स्वाध्याय आपका व्यक्तिगत सत्संग है जो 24 घंटे आपके साथ है।
तो संगति का असर हमारे बाहरी कामों पर पड़ता है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या इसका हमारे मन की बनावट पर, हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर भी कोई गहरा असर होता है? निश्चित रूप से, बल्कि सबसे गहरा असर वही होता है। सत्संग का सबसे बड़ा आंतरिक लाभ है विवेक का जागना। विवेक यानी सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच फर्क करने की क्षमता।
अच्छा,
जिंदगी में रोज हजारों छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं जो हमें सुख या दुख देती हैं। विवेक के बिना हम इन भावनाओं की लहरों में खिलौने की तरह बहते रहते हैं।
और सत्संग इसमें कैसे मदद करता है?
सत्संग आपको एक ऊंची जगह पर खड़ा कर देता है जहां से आप इन लहरों को आते जाते देख सकते हैं, उनमें डूबते नहीं हैं। आपका मानसिक संतुलन बना रहता है, आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके स्वामी बनते हैं।
और यही मानसिक स्थिरता ही सच्ची आजादी है।
बिल्कुल, जो केवल सत्संग और स्वाध्याय से ही हासिल हो सकती है।
इसी बात को लेकर गोसाई तुलसीदास जी की एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, जिसका जिक्र पूज्य गुरुदेव भी करते हैं। मति कीर्ति गति भूत भलाई, जब जेही जतन जहां जो पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ।
जी, इसका बहुत सरल और गहरा अर्थ है। संसार में चार चीजें, अच्छी बुद्धि यानी मति, यश यानी कीर्ति, अच्छी गति यानी मोक्ष और भलाई, ये सब जब भी जहां भी किसी ने भी पाई हैं, तो उसका एकमात्र कारण सत्संग का प्रभाव ही जानना। वेदों में भी इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बताया गया है।
ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इतिहास में ऐसे ठोस उदाहरण हैं जहां किसी की पूरी जिंदगी ही संगति से बदल गई हो? कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही साधारण या बुरी पृष्ठभूमि से आया हो और महान बन गया?
अरे, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। पूज्य गुरुदेव भारत की प्राचीन कथाओं से कुछ ऐसे नाम गिनाते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं, जैसे कि वाल्मीकि,
रामायण के रचयिता।
जी, आज हम उन्हें एक महान ऋषि के रूप में जानते हैं, लेकिन किंवदंती है कि ऋषि बनने से पहले वे रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। देवर्षि नारद के सत्संग ने उनकी जिंदगी को कह सकते हैं कि 180 डिग्री पर घुमा दिया।
ये तो वाकई एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। और कोई उदाहरण?
देवर्षि नारद, जिन्हें हम देवताओं का ऋषि मानते हैं, वे पिछले जन्म एक दासी के पुत्र थे। अगस्त ऋषि, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे घड़े से जन्मे थे। महर्षि वशिष्ठ, जिन्हें एक वेश्या का पुत्र माना गया। इन सभी का जन्म किसी बड़े कुल में नहीं हुआ था, पर आत्मज्ञानी संतों की संगति ने इन्हें उस पद पर पहुंचा दिया जहां आज दुनिया उन्हें पूछती है।
ये उदाहरण तो इस बात को पूरी तरह से साबित करते हैं कि आपका अतीत या आपका जन्म मायने नहीं रखता। सही संगति आपको कहीं से भी उठाकर शिखर पर पहुंचा सकती है।
जी हाँ, इससे साफ हो जाता है कि जो कोई भी अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना चाहता है, उसे अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगति हर हाल में करनी चाहिए।
तो चलिए चर्चा के आखिरी हिस्से में आते हैं। आज का दौर, जिसे पूज्य गुरुदेव स्वार्थ और अपहरण की भयंकर आंधी का समय कहते हैं, जहां हर कोई अपने फायदे के लिए दूसरे को गिराने को तैयार है, ऐसे में सत्संग की क्या भूमिका है?
ऐसे दौर में सत्संग एक कवच की तरह काम करता है, एक सुरक्षा कवच। इस स्वार्थ की आंधी में वही इंसान सीधा खड़ा रह सकता है जो धूर्त और मतलबी लोगों से दूर रह के सज्जन और सत्यप्रिय लोगों से रिश्ता रखता है।
और ये कवच काम कैसे करता है? मतलब एक अच्छा दोस्त या साथी हमें बचाता कैसे है?
इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी गलत रास्ते पर जा रहे होंगे, तो एक सच्चा और अच्छा मित्र आपको टोकेगा, आपको सावधान करेगा, क्योंकि वो आपकी भलाई चाहता है। वहीं दूसरी तरफ एक स्वार्थी व्यक्ति आपको गिरता हुआ देखकर शायद ऊपर से दो धक्के और देगा,
ताकि आपके गिरने से उसका कोई फायदा हो सके।
बिल्कुल, वो आपकी बर्बादी में अपना अवसर देखेगा।
ये बहुत ही सीधी और सच्ची बात है। तो इसका मतलब आज के समय में अपना कल्याण चाहने वालों के लिए अच्छी संगति चुनना एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। इसके बिना बचना बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल, इसीलिए आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को इस बारे में हमेशा सावधान रहना चाहिए और श्रेष्ठ जनों की संगति ही ग्रहण करनी चाहिए।
तो आज के इस पूरी बातचीत का सार यही है कि सत्संग सिर्फ कोई पूजा पाठ या आध्यात्मिक क्रिया नहीं है। यह सार्थक और सुरक्षित जीवन जीने की कला है, यह चरित्र बनाने का सबसे बड़ा साधन है, मानसिक शांति का रास्ता है, और इस स्वार्थी दुनिया में एक सुरक्षा कवच है जो हमें गिरने से बचाता है।
आपने एकदम सही सारांश दिया। पूज्य गुरुदेव ने हमें श्रेष्ठ संगति खोजने के लिए प्रेरित किया है, चाहे वो किसी व्यक्ति के रूप में हो या अच्छी पुस्तकों के रूप में।
लेकिन इस चर्चा के अंत में एक सवाल और उठता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
वो क्या है?
हमने इतनी देर बात की कि हमें अच्छी संगति खोजनी चाहिए, लेकिन इस मार्ग का अगला और आखिरी पड़ाव ये है कि हम खुद को ऐसा कैसे बनाएं कि हमारी संगति दूसरों के लिए सत्संग बन जाए। हमें अपने अंदर ऐसे कौन से गुण विकसित करने होंगे कि सिर्फ हमारी मौजूदगी ही किसी और को ऊपर उठाने का, उसे सही रास्ता दिखाने का काम करे। असली सवाल ये है कि हम वो सत्संग कैसे बने जिसे कोई और ढूंढ रहा है।